الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ہم سورہ انعام کی اس آیات نمبر 12، 13 اور 14 کے معارف و مسائل کل کی کلاس میں پڑھنا شروع کر چکے تھے، جس میں سب سے پہلی آیت جو تھی قل لمن ما فی السماوات، اس میں کفار سے سوال کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام کائنات کا مالک کون ہے. پھر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جواب ارشاد فرمایا کہ سب کا مالک اللہ ہے. کفار کے جواب کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب کفار مکہ کے نزدیک بھی مسلم ہے، یعنی وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے. وہ اگرچہ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، مگر زمین و آسمان اور کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے. تو کل سارس کو وہ آیت مل نہیں رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملوا دی الحمدللہ، قدرتاً اپنی تلاوت میں ہی وہی والی آیت آ گئی. تو آپ کے لیے پھر اس کا نشان لگا کے رکھا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا، اسی کفار کے ساتھ اس کانورسیشن کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ کہیے، ان سے کہیے کہ کون آسمانوں اور زمین کو رزق پہنچاتا ہے، تم کو رزق پہنچاتا ہے آسمان، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے کون تم کو رزق پہنچاتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، جو کہ مالک ہے السمع اور ابصار کا، سننے کی صلاحیتوں کا اور دیکھنے کی صلاحیتوں کا، اور ومن یخرج الحی من المیت، اور کون مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی ایک مردہ زمین ہوتی ہے اور اس میں سے ایک پودا نکل آتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، اس کے اندر سے پتے نکلتے ہیں اور پھول نکلتے ہیں اور پھل نکلتے ہیں، حالانکہ بالکل ایک مردہ زمین تھی، تو اس میں سے کون یہ نکالتا ہے؟ وہ یخرج المیت من الحی، بلکہ انسان کا بھی یہی حال ہے، انسان بھی ایک مردہ پانی کے قطرے سے ہی جو ہے انسان پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. وہ یخرج المیت من الحی، اور کون جو ہے وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی مردہ چیزیں جو ہیں وہ زندہ لوگوں کے اندر سے جب حیات نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مردہ چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری شکلیں. ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، معاملات کی تدبیر کرتا ہے، آپ ان سے یہ پوچھئے، ان کا جواب ہوگا فسیقولون، ان قریب وہ پھر آپ کا سوال سن کر کے جواب دیں گے اللہ، اللہ یہ سارا کام کرتا ہے. فقل افلا تتقون، پھر آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ پھر اس اللہ کے ساتھ تم وہ کرتے ہو جو تم کر رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، تم مانتے ہو کہ اللہ ہی ہے. اب اللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی زبان میں جو خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کا یہ نام ہے اللہ، اور باقی زبانوں کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے نام ہیں، کیونکہ قرآن میں عظیم الشان جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں اللہ کا عربی نام ہی موجود ہوگا نا جو کہ اللہ ہے، یا خالق مالک کا عربی نام ہی موجود ہوگا جو کہ اللہ ہے. ठीक है, लेकिन दूसरी जुबान बोलने वाले भी उसी एक ही जात की बात करते हैं जिसने कि सब कुछ तख्लीक किया, जो कि तमाम कामों का की तदबीर करता है और जिंदा में से मुर्दा को निकालता है, मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। ठीक है, तो ये अल्लाह को मानना जो है ये कदरे मुश्तरक है काफिरों में और मुसलमानों में, ये एक मुश्तरक एक कॉमन बात है। ठीक है, ये वो नहीं है कि जो अल्लाह को नहीं मानता तो फिर वो काफिर है, जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है, नहीं, बल्कि फर्क जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में। बहरहाल आगे चलते हैं, लयजमअन्नकुम इला यौमिल कियामा, जरूर बिल जरूर वो जमा कर देगा तुमको कयामत के दिन में। तो इसमें लफ्ज इला, इला का वैसे तो तरफ के मानी में इस्तेमाल होता है, टूवर्ड्स, ठीक है, लेकिन वैसे तो लफ्ज इला में लफ्ज इला या तो फी के मानी में, यहाँ पर जो इस आयत के अंदर इला का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फी के मानी में, इसलिए कि अरबी जुबान के अंदर एक ही हर्फ जो है वो कई मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, तो वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ पर वो हर्फ जो है वो कौन से वाले मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर फी के मानी में यानी इनसाइड, और मुराद ये है कि अल्लाह ताला सब अव्वलीन व आखरीन को कयामत के दिन में जमा फरमा देंगे। कयामत के दिन जो है ये एक एक ज़र्फ़े ज़मान है, एक बर्तन है, एक यानी ऑफ टाइम, ठीक है, एक कंटेनर ऑफ टाइम, ठीक है, ये कोई एक एक जगह नहीं है खाली, बल्कि एक टाइम है ये, ठीक है, यौम, यौम वैसे भी जो है वो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त के अंदर जमा फरमा देंगे, और या जमा फिर कुबूर मुराद है यहाँ पर, ठीक है, यानी या इला का मानी तो फी ही है यहाँ पर, लेकिन यौमिल कियामा कयामत के दिन में जमा फरमा देंगे, ये जमा फिर कुबूर मुराद है, तो मतलब ये होगा कि कयामत तक सब इंसानों को कब्रों में जमा करते रहेंगे कयामत तक, ठीक है, तो इला का मानी अगर तक लिया जाए, ठीक है, यानी इला से जो है ना वो हद भी डिफाइन होती है कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो अगर इसको हद के मानी में लिया जाए तो फिर मुराद ये होगी कि कब्रों में जमा करते रहेंगे और उस वक्त तक जमा करते रहेंगे जब तक के कयामत का दिन नहीं आ जाता, क्योंकि जब कयामत का दिन आएगा तो उस दिन बहुत सारे लोग जिंदा होंगे दुनिया के अंदर जिनको के मौत सूर की आवाज से ही आएगी, सूर की आवाज से ही उनको मौत आएगी, ठीक है, तो फिर वो सारे लोग भी जो हैं वो कब्रों के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद मजीद कोई कब्र में नहीं जाएगा क्योंकि मजीद कोई जिंदा ही नहीं होगा, ठीक है, तो कब्रों की पॉपुलेशन वो जो है ना यानी पॉपुलेट जो कब्रें हो रही होंगी, कब्रों की आबादी जो बढ़ रही होगी ये कयामत के दिन मुकम्मल हो जाएगी, इसके बाद मजीद कोई कब्रों में आबादी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब ये कब्रों की आबादी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कुदरतन हम हमारे बहुत ही अजीज भाई थे मेरे मामूजात कजन, आप ऐसे अक्सर उनको जानते भी हैं क्योंकि हमारे सिलसिले के भी साथी थे, पीर भाई भी थे, मजालिस के अंदर भी आया करते थे और बहुत नेक तबा और शरीफ इंसान थे, तो उनका जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर अचानक से इंतकाल हो, राइट, छोटे बच्चे हैं, बेटी है, बेटे हैं, 15 साल ज्यादा साल उम्र बड़े बेटे की और बाकी जो है वो उससे भी छोटी उम्र के, लेकिन मौत किसी चीज का इंतजार नहीं करती, मौत किसी चीज का लिहाज नहीं करती, अल्लाह ताला ने इस मामले में कोई मोहलत नहीं रखी है, तो बच्चे का भी इंतकाल हो जाए उसमें भी कोई नहीं कि वो अभी तो बच्चा था, अभी तो उसके खेलने के दिन थे, अभी तो कूदने के दिन थे, अभी तो उसने माँ अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनना था, तो ठहर जाती मौत है? नहीं, वक्त आ गया छोटा बच्चा भी दुनिया से चला गया, वक्त आ गया जवान जहान जिसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते थे वो भी दुनिया से चला गया, और अगर बूढ़ा है कि जिससे अब सिर्फ यादें वाबस्ता हैं और चंद जो है वो मोहब्बत का ताल्लुक है और कोई उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अगर उसकी मौत आ गई वो भी दुनिया से चला गया, ये भी दुनिया से चले गए, तो अब जब उनको कब्र में उतारा जा रहा था तो इनके बच्चे जो बेटे मौजूद थे वहां पर छोटे, तो वो रोना शुरू हुए, अच्छा कुदरतन उनके जो वालिद थे यानी आज इसके मामू उनका चंद महीनों पहले ही इंतकाल हुआ था, और वो कराची की कब्र के अंदर, कराची में उनका इंतकाल हुआ तो कराची के कब्रिस्तान के अंदर वो दफन, और इनका इंतकाल जो है वो दमाम और रियाज के दरमियान के हाईवे के ऊपर हुआ। तो इनका जो तदफीन हुई वो खुबर जो शहर है बिल्कुल पर्शियन गल्फ के बॉर्डर के ऊपर, वहां के कब्रिस्तान के अंदर इनका इनकी तदफीन हुई। तो इस आज इसके दिन में अजीब बात आई, तो उन बच्चों को ना बस थोड़ा सा दिलासा देने की खातिर, कि उनको जरा आंसू पोंछने की खातिर, साजिद ने एक बात कही, दिल में भी पहली दफा ही आई थी उस वक्त, और उसी वक्त उनको ये बात भी समझाई कि बेटा आपके अब्बू जो अंदर चले गए हैं ना, तो अब उनकी सबसे पहले जो है वो दादा अब्बू से मुलाकात होगी, यानी मेरे मामू से, ठीक है, क्योंकि अंदर की जो दुनिया है ना वो सारी आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है वो जो के सऊदी अरब के कब्रिस्तान में है और वो जो है वो पाकिस्तान के कब्रिस्तान में है, तो अब इन दोनों की आपस में कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि बहुत फासला है दोनों के दरमियान, बहुत दूर दूर है दोनों की कब्रें। नहीं, अगर ये मग़फ़ूर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी गुनाहों को गलतियों को माफ कर दिया है, ठीक है, और इनके ऊपर मेहरबानी फरमा दी है, अगर इस अगर के साथ है ये सारा मामला, इस कंडीशन के साथ है, तो अगर इनकी गलतियों कोताहियों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, तो अब जो है ना इनकी उस आलम के अंदर, आलम बरजख के अंदर इनकी मुलाकातें होंगी, और जो पिछले जाने वाले मौजूद थे वहां पर, अब नए आने वालों का वो बाकायदा इस्तकबाल करते हैं और उनसे हाल अहवाल पूछते हैं। ये हदीस मुबारक से हमें पता चलता है, अपनी तरफ से नहीं, कि हाल अहवाल पूछते हैं कि हाँ भाई सुनाओ क्या हाल चाल है, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाए, और ये भी पूछते हैं कि जो दुनिया में थे जिनको कि हम कई साल पहले छोड़ करके हम कब्र में आ चुके हैं, अब उनका क्या हाल है, अब वो कैसे हैं। तो वो जो नया आने वाला मुर्दा होता है वो उनको बताता है कि फलाना शख्स अब ऐसा है, फलाना शख्स अब ऐसा है, फिर वो नाम ले लेके पूछते हैं, अच्छा हमारे उस जानने वाले के बारे में बताओ, उस जानने वाले के बारे में बताओ, तो किसी एक जानने वाले के बारे में पूछते हैं कि सुनाओ उसका क्या हाल है, तो वो जवाब देता है कि वो तो मर चुका, वो तो आलम बरजख के अंदर, आलम कबर के अंदर आ चुका, तो आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप उसकी उससे मुलाकात नहीं हुई, क्या आपकी उससे मुलाकात नहीं हुई। तो कहते हैं नहीं, हमारी तो उससे मुलाकात नहीं हुई। तो उसके ऊपर ये दोनों नतीजा अखज करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसको कबर में अजाब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई है, इसी वजह से उसको अपने जानने वालों से, रिश्तेदारों से, मोहब्बत करने वालों से मुलाकात के लिए आजादी नहीं दी गई है। तो जो अल्लाह ताला से माफी मांगते होंगे, अल्लाह ताला की रजा की ऊपर चलने की कोशिश करते होंगे, उनकी इस दुनिया की जिंदगी भी हसीन अल्लाह ताला बना देते हैं और उनकी कब्र की जिंदगी भी अल्लाह ताला हसीन बना देते हैं। क्या ये इज इट नॉट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट? इसकी ये क्यों तमन्ना करने वाली चीज नहीं है कि हमारे कितने अजीज, कितने रिश्तेदार, कितने मोहब्बत करने वाले जो इस दुनिया से चले गए हैं, हम उनसे मिल बैठे जा करके, हम उनके साथ वक्त गुजारे जा करके, राइट, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन ये किसके लिए होगा कि जिसकी मग़फ़िरत होगी, और मग़फ़िरत किसकी होगी, किसी हठ धर्म जिद्दी और ऐसी जो बुरी खसलतें होती हैं जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है, राइट, या जो अल्लाह ताला के साथ जो है वो बुरा मुआमला करता है, उसके साथ ये मग़फ़िरत वाला मुआमला नहीं होता, ठीक है। तो हम अब डिसाइड कर लें कि मरना तो हम सब ने, किसी एक ने भी नहीं बचना, ठीक है। कल भी ये बात पड़ी थी कि वो बस 70-80 साल लगते हैं, पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो दुनिया से वाइप आउट हो जाती है और नई जनरेशन आ जाती है, तो हम कोई एक्सेप्शन है इसके अंदर कि हमने नहीं जाना, राइट? तो हमने भी जाना है, लेकिन हमने किधर जाना है, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में, द बॉल इज इन आवर कोर्ट। तौबा कर लें अपने तमाम गुनाहों से, चाहे वो अमल के गुनाह हो, चाहे सोच के गुनाह हो, चाहे फिक्र के गुनाह हो, ये जिदबाजी जो है ना, ये खामखा की जो अनानियत है, ये किसी काम नहीं आने वाली है, कहीं भी काम नहीं आने वाली है, इसमें नुकसान ही नुकसान पहुंचाना है। तो कब्र तक इंसानों को अल्लाह ताला जमा करते रहेंगे, कयामत तक जमा करते रहेंगे कब्रों के अंदर। यहां तक कि रोज कयामत में सबको जिंदा करेंगे। उन्होंने सवाल लिखा है शायद कि जैसे किसी के वालिद इंतकाल हुए मगर हम अपने वालिद को देखे नहीं जिंदगी में, तो मरने के बाद पहचान हो जाएगी, क्या हम पहचान जाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है? अरे फजूल के सवाल नहीं क्या करें, ठीक है, क्या हम पहचान जाएंगे? ठीक है, आपको पता है इस बात के जवाब, मुझे ये बात भी पता है, ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे यार, मतलब क्यों नहीं पहचानेंगे? नबी अलैहिस्सलाम को पहचान जानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम तो नस्लों 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 पहले हमसे दुनिया से गुजरे। अच्छा, ये जो नेक लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के काम को अपना काम बनाते हैं और इसी गम में सारी जिंदगी गुजार देते हैं, वो कब्रों में जाकर के सिर्फ अपने अम्मा अब्बा से नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपने मामू चाचा से नहीं मिलेंगे, वो कब्र में जाकर के नबी अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात करेंगे, और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम की जो मजालिस होती है ना आलम बरजख के अंदर, वो उन मजालिस के अंदर जाकर के शामिल हो। जरा तस्वुर करें क्या जिंदगी होगी, वो क्या मजे ही मजे होंगे उसके अंदर। और ये जितने मजे वाली जिंदगी भी हो जाए, जन्नत के मुकाबले में इस जिंदगी का भी कोई मवाजना नहीं। जन्नत तो इससे भी ज्यादा, इससे भी कई गुना ज्यादा हसीन जगह है और बेहतर जगह है, ठीक है। ईमान वालों को तो अल्लाह ताला इधर ही जो है वो नवाजना शुरू कर देते हैं, यानी मरने से पहले ही नवाजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो शुक्र वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सब्र वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और फिर मरने के बाद जो है वो ये नवाजिशें जो है ना ये मजीद बढ़ जाती हैं, और फिर कयामत के दिन जब अर्श का साया मिलेगा तो ये नवाजिशें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और फिर उसके बाद जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फिर तो क्या पूछना है, क्या कहना है। कतब अला नफ्सिह रहमा, सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तआला ने मखलूकात को पैदा फरमाया तो एक नवश्ता, नवश्ता यानी एक एक डॉक्यूमेंट सा, या एक जो गोया कि एक तहरीर, अपने जिम्मे वादे का तहरीर फरमाया कि मेरे जिम्मे है ना एक एक वादा मैंने अपने आप से कर लिया, ठीक है, जो अल्लाह ताला ही के पास है, जिसका मजमून यह है, इन रहमती तगलिबु अला गज़ब, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर गालिब है, गालिब रहेगी। कल कुदरतन कुछ साथियों के साथ वही खत्म तरावी के मौके पर बयान का मौका मिला, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है वो शुक्र का मौजू दिल में डाला, उसके ऊपर काफी सारी बातें हो गई, तो वो यानी अल्लाह ताला उसका बेसिकली लुब लुबाब ये था कि ये जो शुक्र वाला मामला है ना, तो अजीब अल्लाह ताला की रहमतें जो है ना वो इसके इसके ऊपर गौर करके, अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर खुलती हैं, अल्लाह ताला की नवाजिशें हमारे ऊपर खुलती हैं, कि अल्लाह ताला ने कितने असबाब बनाए कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे असबाब फैला दिए कि जिनको देख करके हम हकीकी मानों में अल्लाह का शुक्र अदा करने के काबिल बन सकते, ठीक है। क्या मतलब कि ये जो शुक्र, ये जो नेमतें अल्लाह ताला की हमारे पास हैं, तो ये सारी की सारी नेमतें जो हैं इनके ऊपर हमें शुक्र करना लाजम लाजम है, ठीक है, शुक्र करने के ऊपर ही हमें निजात मिलेगी, और शुक्र ना करने के ऊपर जो है हमें अजाब मिलेगा। कुफराने नेमत, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अजाबी लशदीद, ठीक है, तो शुक्र ना करने के ऊपर अजाब है, और वो बड़ा शदीद अजाब है। तो अब शुक्र करना क्या होता है, बदकिस्मती से हमारी चूंकि सारी की सारी तवज्जुहात जो हैं वो फनून के अंदर और दुनिया तलबी के अंदर, और जो है वो अपने छोटे छोटे जो है ना वो ख्वाहिशें पूरे करने के अंदर लग गई है, तो हमें सारा इल्म जो है वो उन चीजों का हासिल है कि कैसे ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं, कैसे जो है वो यानी दुनिया की छोटी छोटी बस है, या ये कि गुस्सा आता है तो कैसे अगले बंदे को तकलीफ पहुंचाई जाती है। तो इन उलूम के अंदर हम इतना फंस गए हैं कि हमें शुक्र करने की तारीफ ही भूल गई, पता ही नहीं है कि जी शुक्र करने का मतलब क्या होता है। तो शुक्र करने का मतलब ये होता है कि किसी ने आपको कोई चीज दी है तो उसको अपना हक ना समझा जाए बल्कि उसका एहसान समझा जाए, अपना हक ना समझा जाए बल्कि उसका एहसान समझा जाए, माना जाए कि उसने मेरे ऊपर एहसान किया है, अब उसका शुक्रिया अदा किया जाए कि आपने एहसान किया कि मुझे ये चीज दे दी, वरना मैं इसका मुस्तहक नहीं था, आई वॉज नॉट डिजर्विंग ऑफ इट। क्योंकि इफ यू स्टार्ट फीलिंग, जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरा हक था, तो फिर शुक्र हो ही नहीं सकता, फिर वो फूटे मुंह का, झूठे मुंह का शुक्र होता है, जो कि हमें अंग्रेजी स्कूल में सिखाया जाता है, से थैंक यू, राइट? जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं ना से थैंक यू, तो वो बच्चे को कुछ पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। हाँ, बस किसी ने कोई चीज दे दी है, अब जो है वो थैंक यू कहना है। वो काफिर भी अपने बच्चों को सिखाता है, बल्कि मुसलमानों से आज के दौर में ज्यादा ही सिखाता है, ठीक है? हजरत जो है वो प्लेन में बैठे हुए थे, बराबर में कोई गोरी औरत बैठी हुई थी और उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची थी, वो उसको एक चमचा देती थी मुंह में और कहती थी से थैंक यू, तो बच्ची कहती थी थैंक यू मॉम, और फिर उसके बाद दूसरा चमचा देती थी तो वो से थैंक यू, फिर वो बच्ची थैंक यू मॉम कहती थी। इस तरह से हजरत फरमाते हैं मैंने 24 दफा तो काउंट किया कम से कम कि उसने बच्ची ने जो है ना वो थैंक यू कहा और माँ ने उसको थैंक यू कहना सिखलाया। तो भाई ये काम तो काफिर भी कर रहे हैं, वही मुसलमान जो है वो जरा ज्यादा अंग्रेजी पढ़े हुए, जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड हो जाते हैं आज के हिसाब से, तो वो भी थैंक यू कहना सिखाना शुरू कर देते हैं, वरना हमारे यहाँ इसका भी रिवाज नहीं है थैंक यू कहने का या थैंक यू बोलने का, शुक्रिया कहने का, हमारा रिवाज बिल्कुल खत्म है, बदअखलाकी की इंतहा, ठीक है? लेकिन दिस इज नॉट व्हाट शुक्र इज, ये शुक्र नहीं है। शुक्र तो दिल की एक कैफियत जिसका इजहार जुबान से होता है, और वो कैफियत क्या है कि भाई मुझे तो ये चीज मिलनी नहीं थी लेकिन फिर भी उसने मुझे दे दी, तो इस वजह से मैं उसका शुक्रगुजार हूं, ठीक है? अब ये शुक्रगुजारी, तो अब ये चीज कि ये मेरी मेरी मेरा हक नहीं था, ये मेरा हक नहीं था, ये चीज जो है वो इंसान भूल जाता है और इंसान समझना शुरू कर देता है कि उसके पास जो नेमतें मौजूद हैं ये उसका हक है, ये उसने खुद से अर्न, हक क्या चीज होती है, जो कि आप खुद से अर्न करते हैं, राइट? आप मेहनत करते हैं उसके लिए, आप अपनी कोई अकल लड़ाते हैं, आप कोई तदबीर करते हैं, आप उसके लिए तालीम हासिल करते हैं, है ना? और फिर उसके बाद आपको वो चीज मिलती है, तो दिस इज लाइक अ पेमेंट, इसको कहते हैं पेमेंट। ये पेमेंट जो होती है ना ये हक होती है काम करने वाले का, ठीक है? तो पेमेंट के ऊपर जो शुक्रिया अदा किया जाता है ना वो फूटे मुंह का और झूठे मुंह का शुक्रिया होता है, वो हकीकी शुक्रिया नहीं होता, ठीक है? तो अब जो है ना वो इंसान भूल जाता है क्योंकि शैतान भुला देता है, उसका नफ्स जो है वो शैतान की बात सुन सुन करके मान मान करके उसको भुला देता है और कहना शुक्र नहीं है तो ये दिस यू डिजर्व इट, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा हक है। तो अब जब हक समझना शुरू कर दिया तो अब जो है वो शुक्र कैसे करेगा, ये अब तो कर ही नहीं सकता शुक्र। तो अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम फरमाया कि अहसनुल खालिकीन होने के बावजूद, राइट, सबसे बेहतरीन तख्लीक करने वाला अपने अपने बारे में खुद फखर से अल्लाह ताला फरमाते हैं, राइट, कि मैं तो अहसनुल खालिकीन, और मेरी जो तख्लीक है ना उसके अंदर जो है वो तुम कोई एवज नहीं पाओगे, तुम मेरी तख्लीक के अंदर कोई नुक्स नहीं पाओगे, और जो है वो मैंने ऐसे जबरदस्त जो है वो सबको फसवा है, सबको बिल्कुल बराबर सराबर कर दिया। क्या मतलब, इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि यानी ठीक ठीक बनाया हमने, बेहतरीन बनाया हमने, लेकिन इसके बावजूद कि अल्लाह ताला अहसनुल खालिकीन है और इस बात पे फख्र करते हैं कि मैंने सबको ठीक ठीक बनाया, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने कितनी सारी मखलूक हमारे इर्द गिर्द फैला दी है, राइट, कितने सारे इंसान हमारे इर्द गिर्द फैला दिए हैं कि जिनके पास कुछ ना कुछ जो है ना वो नुक्स होता है, राइट, कुछ ना कुछ कमी होती है उनके पास, और बुनियादी नेमतों में अगर हम देखें जो कि हर इंसान के पास होती है, दो आंखें देखने के काबिल, दो कान सुनने के काबिल, दो हाथ काम करने के काबिल, दो टांगे चलने के काबिल, दौड़ने के काबिल, अल्लाह ताला ने कई सौ में से एक को ऐसा बना दिया होता है कि जिसके हाथ जो है वो काम करने के काबिल नहीं होते, कई सौ में से एक आध को ऐसा बना दिया होता है जिनकी आंखें जो होती हैं वो देखने के काबिल नहीं होती, कान देखने के काबिल नहीं होते, किसी का जो है वो दिमाग सोचने के काबिल नहीं होता, उसको मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है, अब ये क्यों बना दिया? ये तो गोया के अपने ऊपर एक ब्लेम ले लिया अल्लाह ताला ने ना, कि अल्लाह ताला जो है वो सबको ठीक नहीं बना सकते थे, नऊज बिल्ला। शैतान सिफत लोग तो ये बात कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला सबको ठीक नहीं बना सकते थे, अल्लाह ताला की जो है ना वो रॉ मटेरियल कम पड़ गया था, है ना। फैक्ट्री वाले जो है ना, फैक्ट्री में कोई जो नाकिस माल निकल आया ना, तो कहते हैं ना कि फैक्ट्री के मशीन ने जो है वो काम करना छोड़ दिया था उस वक्त, कोई फॉल्ट पैदा हो गया था फैक्ट्री के अंदर, या फैक्ट्री के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो कम हो गया था, इस वजह से ना वो नाकिस चीजें बन बन करके निकल आई। तो क्या अल्लाह ताला की फैक्ट्री के अंदर कोई रॉ मटेरियल कम पड़ गया था, कोई खाम माल जो है वो उसकी कमी हो गई थी, या जो है वो मशीन ने काम करना छोड़ दिया था, या कुछ और कमी हो गई थी? नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला उस वक्त जो है वो नींद आ गई थी अल्लाह ताला को, राइट, कि वो जो है ना इन लोगों को जो है वो ठीक आंखें नहीं बना सका, इनकी इनकी जो है वो ठीक टांगे नहीं बना सका। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, वह हुआ सुभान हुआ तआला थुम्मा वरा उल वरा थुम्मा वरा उल वरा, वो तो सुभान है, पाकीजा है हर किस्म के नुक्स से, हर किस्म की नींद से और गफलत से और ऊंग से। तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? वो हमारे हमें याद दिलाने के लिए, जब हम भूलना शुरू हो जाए कि ये हमारा हक है, ये नेमतें हमने कमाई, ये नेमतें, हम भूलना शुरू हो जाए, नहीं, अल्लाह ताला सामने किसी अंधे को पहुंचा देंगे, राइट, अल्लाह ताला सामने किसी लंगड़े को, अल्लाह ताला सामने किसी किसी के औलाद को पहुंचा देंगे कि जो कि फिजिकली रिटार्डेड है या मेंटली रिटार्डेड है, ताकि मुझे ये याद आ जाए कि तुम्हारी जो औलाद बिल्कुल ठीक ठाक सही सालिम है, ये तुम्हारा हक नहीं था, तुम्हारी औलाद भी वैसी हो सकती थी, तुम्हारी औलाद भी वैसी हम बना सकते थे, ना तुम कुछ कर सकते थे ना वो कुछ कर सकता है, जैसे वो कुछ नहीं कर सकता है इस बारे में, उसी तरह तुम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। ये रिमाइंडर्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने ये भी एहसान फरमाया हमारे ऊपर कि हम भूल जाते हैं, अल्लाह ताला हमें रिमाइंडर्स इस तरीके से देते हैं ताकि हम शुक्र अदा करने के काबिल हो सकें, ताकि हम शुक्र अदा करने के काबिल हो सकें। तो अल्लाह ताला ने हमारे शुक्र का जो है वो सारा इंतजाम फरमाया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, एक और भी बात थी जो इसमें मेरे जहन में नहीं आ रही, एक और भी बात कल रात हुई थी, अगर सुनने वालों मुझे किसी को याद हो। तो ऐसे अल्लाह मेड श्योर कि हम शुक्र करें, ठीक है। और फिर दरमियान में एक और बात थी, वो जहन में नहीं आ रही, उसके बाद ये बात थी कि अब जब हम इतने रिमाइंडर्स के बाद जब हम अल्लाह ताला की किसी नेमत का शुक्र करते हैं, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इंसेंटिव क्या दिया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे ना तो मैं नेमतों को और बढ़ा दूंगा। भाई ये जो शुक्र हम कर रहे हैं, ये कोई हम अपनी सलाहियत की बुनियाद पे कर रहे हैं? हम तो निसियान का मजमुआ है, राइट, हम तो भूल जाते हैं, हम तो शुक्र करना नहीं चाहते हैं, हम तो अपना हक समझना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा नफ्स ऐसे ही है जो कि हर चीज को अपने आप से मंसूब करना चाहता है। वो तो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, इतने जो है वो रिमाइंडर्स रखे, तब कहीं जाकर के हम शुक्र करने के काबिल होते हैं। अच्छा, शुक्र करने का की तारीफ उसको सिखाने के लिए भी अल्लाह ताला ने उलमा और मशाइख पैदा फरमा दिए, और उनके दिल में ये बात डाल दी कि भाई लोगों को शुक्र की तारीफ भी सिखाते रहो, क्योंकि लोग जो है ना शुक्र के बारे में ही मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए। ये भी इंतजाम अल्लाह ताला ने ही किया, रिमाइंडर्स का भी इंतजाम अल्लाह ताला ने ही किया, और फिर उसके बाद इनाम क्या दे रहे हैं, शुक्र करोगे ना तो मैं नेमतों को और बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। गोया कि हमने अपनी तरफ से कोई शुक्र किया है, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला सोच लें हम कि कितना अल्लाह ताला के पास खजाने हैं, और कितना वो उन खजानों में से जो नेमतें हैं वो अपने बंदों को देना चाहते हैं, जब ही तो ये सारे के सारे पूरा का पूरा निजाम बनाया अल्लाह ताला ने, शुक्र करने का निजाम बनाया अपने कुरान के अंदर जो है वो, ऐसे ऐसे जो है वो शुक्र की रिमाइंडर्स दिए हैं कि जो इबलीस का वाकया है, उस इबलीस के वाकये में फरमाया कि इबलीस ने ये कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को दाएं से भी गुमराह करूंगा, बाएं से भी गुमराह करूंगा, आगे से भी गुमराह करूंगा, और पीछे से भी गुमराह गुमराह करूंगा, और आप इनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे, शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे। तो ये शुक्र की, यानी ये नहीं कि आप इनमें से अक्सर को इबादत करने वाला नहीं पाएंगे, आप इनमें से अक्सर को, हत्ता कि ये भी नहीं फरमाया कि ईमान लाने वाला नहीं पाएंगे, बल्कि खास शुक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया,
और किसी जगह पे लगातार फरमाते हैं कि जो शुक्र करता है वो अपने नफ्स के लिए शुक्र करता है, राइट, यानी उसका अपना फायदा होता है शुक्र करने के अंदर, वो मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा शुक्र करके, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद जब हम शुक्र करते हैं तो नेमतें बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, हर शुक्र के ऊपर मजीद। तो कितना देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं। अब अगर कोई इन तमाम हालात के बावजूद, इन तमाम एहतमामों के बावजूद अगर कोई शुक्र ना करे बल्कि नेमतों का इनकार करे और नाशुक्री के ऊपर उतर आए, कंप्लेनिंग के अंदर आ जाए कि मैं तो ये इतनी परेशान हूं और मैं तो उस वजह से इतनी परेशान हूं और ये चीज जो है वो ठीक नहीं है और वो चीज जो है वो ठीक नहीं है और ये चीज ऐसी नहीं है, उसको ऐसे होना चाहिए था, मुझे ऐसा ना मिला, मुझे वैसा क्यों मिला, राइट। तो अब क्या ख्याल है, ये पिटाई का मुस्ताहिक नहीं होता ये शख्स फिर उसके बाद, या ये औरत जो है जो ये ऐसी बातें कर रही होती है, अल्लाह ताला की नेमतों को इग्नोर करके उनमें से कीड़े निकाल निकाल करके उनको जो है वो हाईलाइट कर रही होती है, उनको ग्लोरीफाई कर रही होती है कि ये नुक्स ये है इसके अंदर, ये नुक्स ये है इसके अंदर, ये नुक्स ये है, इस्लाह के लिए नहीं, कंप्लेन के लिए। ये नहीं कि मैं इस्लाह करूंगी या मैं जो हूं वो इनकी खैरख्वाही में जो है वो इस मसले को हल करूंगी, नहीं, वो तो अल्लाह वाले ये काम करते हैं, वो तो मुस्लिहीन का ये काम होता है, ये मुस्लिहीन वाला काम नहीं करे, इसने तो खाली कीड़े निकालने हैं, इसने तो खाली कंप्लेन करनी है। तो अब ऐसे शख्स को क्या क्या होना चाहिए, इसको लड्डू खिलाने चाहिए इसको, राइट, इनको कुछ है वो फूलों के हार पहनाने चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। तो इनके ऊपर फिर अल्लाह ताला की नाराजगी होती है और वो नाराजगी जो होती है फिर कल्मिनेट किस फॉर्म में करती है कि अल्लाह ताला फिर जो उनके पास नेमतें मौजूद थी ना, जिनका इन्होंने शुक्र नहीं अदा किया है, अल्लाह ताला उन नेमतों को इनसे छीनना शुरू कर देते हैं, वापस लेना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को अजाब कहा जाता है, इसी प्रोसेस को अजाब कहा जाता है। ये बिजली कड़क गई और चीख आ गई और हमारे जहन में सिर्फ ये कि ये अजाब है, नहीं, बिजली कड़कने से और चीख के आने से होता क्या है, नेमतें हमसे छिन जाती, नेमतें छिन जाती, क्यों छिन जाती हैं, हमने शुक्र अदा नहीं किया हुआ होता। तो कतब अला नफ्सिह रहमा जो है ना, कि ये रहमत तो गालिब है लेकिन जो नाशुक्रे होते हैं और कुफराने नेमत करने वाले होते हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला का गजब भी आता है, लेकिन अगर वो इस हालत में भी पलट करके तौबा कर लें, अल्लाह ताला की गालिब रहमत जो है वो फौरन एक्शन में आती है और उनकी खताओं को माफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो गालिब क्या चीज हुई, रहमत हुई ना, और गजब क्या हुआ, मगलूब हुआ। लेकिन गजब इज नॉट कल अदम, गजब नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि गजब है ही नहीं, नाराजगी है ही नहीं, राइट, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। और कुरान अजीम शान जो कि अल्लाह का अपना कलाम है, इससे ये बात प्रूव होती है, इंसान अकल के तौर पे सोचे, अकल के अपने मेयार पे सोचे, यानी नफ्स और शैतान की बात सुन करके अगर बात को सोचे तो वो इस नतीजे पर भी पहुंच सकता है कि नहीं जी, इतने बड़े और हम इतने छोटे और जो है वो हर चीज के मालिक और हम किसी चीज के मालिक, अकल की फिर वो धोखे हैं ये सारे ना, तो गजब तो हो ही नहीं सकता, राइट, गजब तो मुमकिन ही नहीं हो सकता, गजब की तो एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है। तो भाई इसके ऊपर फिर अल्लाह का कलाम ही पेश किया जाए कि भाई हम और आपकी अकल जो है ना, ये हम नहीं समझते अल्लाह की हिकमतों को, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा ही है, मान लो तो तुम्हारा फायदा, नहीं मानोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान है, मरने के बाद तुम्हें हकीकत वैसे भी पता चलनी है, ठीक है। तो इन्होंने और क्या लिखा है, एक मैसेज, हाँ, जो भी हम दुआ करते हैं मगफिरत की के में, अच्छा ये हो गया था, जो भी हम दुआ करते हैं मगफिरत की के, अब्बा को क्या वो उनको मालूम होगा कि ये मैं हूँ या मेरे भाई या मेरी बहन है। हाँ, जो दुआएं दुनिया से जाती हैं ना आलम बरजख में, तो आलम बरजख में उनको पता चलता है कि उनके किसने जो है वो उनके लिए दुआ करी, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, बाद में मغرور हो जाते हैं किसी वजह से।
शैतान भुलवा देते हैं ना, फिर वो मगरूर हो जाते हैं, पहले ठीक होते हैं, पहले मगरूर नहीं थे, बाद में मगरूर हो गए। क्या हम अगर बच्चे को बोलो कि आप समझ ही नहीं रहे कोई बात, वैसे दीनी मजलिस में जाने का कोई फायदा नहीं हो रहा आप लोग पर, मतलब बच्चों पर, तो क्या ये भी नाशुक्री है क्या? अल्लाह की दी अल्लाह ताला की दी नेमत क्या है, अल्लाह ताला की दीनी नेमत से मिलना। उन्होंने लिखा है कि क्या हम अगर बच्चे बचने बच्चे को बोलो, क्या अगर बच्चे को बोलो कि आप समझ नहीं रहे कोई बात, वैसे वैसे दीनी मजलिस में जाने का कोई फायदा नहीं हो रहा आप लोग पर, मतलब बच्चों पर, तो क्या ये भी नाशुक्री है क्या? देखें, ये जो नाशुक्री है ना, ये अब आपने एक पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है, या अल्लाह ताला ने आपसे खुलवा दिया है। ठीक है, तो अल्लाह की मर्जी होती है कि हमारे दिल में कोई बात आती है, हम नहीं है उस वक्त प्लान कर रहे होते करने का, लेकिन फिर अल्लाह ताला कहा नहीं करवा करो इस वक्त ये वाली बात, तो फिर वो करवा देते हैं किसी के जरिए। तो भाई ये जो नाशुक्री है ना, ये तो आप जिस दोस्त को नाशुक्री समझ रही है ना, तो वो तो खैर नाशुक्री है। ठीक है कि अल्लाह ताला ने दीनी मजालिस का एहतमाम फरमाया है और बच्चों के सामने ऐसी बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके सवाल का ये जवाब हो गया। लेकिन जो असल नाशुक्री हो रही है ना, असल नाशुक्री हो रही है वो बच्चों यानी वो ये हो रही है कि जो माँ बाप है ना, उन्होंने ऐसा लगता है कि कसम उठाई हुई है कि हमने जो हमें बात समझाई जा रही है, हमने उनको नहीं सुनना है और हमने उनको नहीं समझना है और हमने उनको अमल में नहीं लेकर के आना। ठीक है, ये नाशुक्री जो है ना, वो बहुत इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा मसला बनती चली जा रही है कि माँ बाप जो है वो औलाद को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको उनकी तरबियत करनी है और कैसे उनको तालीम देनी है, कैसे उनकी इसलाह करनी है और कैसे उनकी हौसला अफजाई करनी है, ये चीज माँ बाप नहीं सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, हालांकि अल्लाह ताला ने सिखाने के वाफिर यानी इंतजाम किए, वाफिर इंतजाम किए। ठीक है, हमारे हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी, ठीक है, इनके यहाँ जितना ज्यादा जोर है घर के ऊपर, राइट, बीवी के साथ मामलात के ऊपर, शौहर के साथ मामलात के ऊपर और बच्चों के साथ मामलात के ऊपर, इतना आपको इस दौर और इस जमाने में मैं तकरीबन यकीन से कह सकता हूं आपको कहीं इतना एम्फेसिस नहीं मिलेगा, कहीं इतनी तफसील नहीं मिलेगी, कहीं इतनी यानी इतने मुख्तलिफ तरीकों से और अंदाजों से इस बात को समझाया जाना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इस सिलसिले के अंदर जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना डायरेक्ट या एक वास्ते से अपना ताल्लुक हजरत पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामत कातुन से बनाया हुआ है ना, अब अगर वो इस बात को नहीं सीख करके दे रहे हैं और वही अपनी पुरानी रविज के ऊपर बरकरार हैं, या अपने खानदानी तौर तरीके के ऊपर या अपने जो है वो रिवायती तरीके के ऊपर बरकरार हैं और इधर से बिल्कुल सीख करके नहीं दे रहे हैं, वो इतनी बड़ी नाशुक्री कर रहे हैं, इतनी बड़ी नाशुक्री कर रहे हैं कि डर लगता है कि उसके ऊपर किस किस्म की जो है वो सजा मिलेगी। सोच करके डर लगता है कि उसके ऊपर किस किस्म की सजा मिल सकती है। बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला चल रहा है। हजरत जी की किताबें जो है ना, आपको कई ऐसी किताबें नहीं मिलेंगी और उन खाली किताब ही नहीं कि उसके ऊपर टाइटल जो है वो मिसाली माँ का टाइटल है, इस टाइटल की आपको कोई किताब नहीं मिल जाएंगी, आपको इस टाइटल की और भी कुछ किताब है,
लेकिन उसके अंदर जिस किस्म का मवाद होता है, जिस किस्म के अकली दलायल और नकली दलायल और साइंसी दलायल और दौरे हाजिर के दलायल और इतने सारे वाकयात के साथ जो बात समझाते हैं, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। अब इस सिलसिले से वाबस्ता लोग जो हैं वो बिल्कुल यानी सुनी अन या सुने भी नहीं, पहली बात। बहुत सारे लोग तो सुनते ही नहीं है ना, उनके पास तो बड़ी मसरूफियात है, वो दूसरों को सुनते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर जाकर के ना सियासत को सुन रहे होते हैं, फलाने मौलाना साहब को सुन रहे होते हैं, और फलाने मौलाना साहब के जो है वो दुश्मन को सुन रहे होते हैं, और फिर जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्या जवाब देना चाहिए उस जवाब को सुन रहे होते हैं, और फलानी दलाइल को सुन रहे होते हैं, एक से एक जो है वो दुनिया जहां की उनके पास तफसीलात मौजूद होती हैं। लेकिन अपनी बीवी के साथ क्या मामला करना था ये नहीं सीख करके देना उन्होंने, अपने शौहर के साथ कैसे रहना था ये नहीं सीख करके देना उन्होंने। अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आ सकता है इसके ऊपर, बहुत बड़ा अजाब आ सकता है अल्लाह ताला के इसके ऊपर। और औलाद के साथ भी इसी किस्म का रवैया है, यानी ऐसा लगता है कि माएं जो है ना बिल्कुल गुम है, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर डॉटर्स, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बेटियों के साथ करना क्या है। हालांकि समझा समझा करके हजरत ने जो है वो बयानात और किताबें और जाती मुलाकातें कितना समझाया है, लेकिन माएं ऐसी हैं कि जैसे बिल्कुल ना उनको बिल्कुल गायब हैं। क्यों गायब है भैया? दुनियावी एतबार से तो डिग्रियां लेकर के आई हुई हैं, और दीन में जो है वो आपको इतनी सी बातें समझ में नहीं आ रही। उसी तरह बाप बिल्कुल गायब हैं, बेटों के साथ क्या करना चाहिए था, नो कम्युनिकेशन, बेटों से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, या पता नहीं किस किस्म की जो है वो उल्टी सीधी, अगर अगर कम्युनिकेशन है वो भी पता नहीं किस किस्म की कम्युनिकेशन है। बेटे अपनी लाइन पे चल रहे हैं और बाप अपनी लाइन, और दोनों माशाल्लाह पीर जुल्फिकार अहमद के सिलसिले में अजीब तमाशे सामने आते हैं, खुद नजर आते हैं या दूसरे भी बताते हैं, दोनों तरीकों से पता चलता है। अब्बा हुजूर को कुछ पता नहीं कि अपने बेटे के साथ क्या करना है, कैसे वक्त गुजारना है, क्या बातें करनी है, क्या उसको सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। ये नाशुक्री है, ये नाशुक्री है, और नाशुक्री जो है ना इसी को कुफराने नेमत कहा जाता है, और इसके ऊपर अजाब शरीद अल्लाह ने फरमाया। मैं नहीं बोल रहा कि गुस्से में आके डांटते रहते हैं आप हर वक्त, ये अल्लाह का कुरान है, सिर्फ अजाब का भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अजाब शरीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इन अजाबी लशदी, नामे ताकीद के साथ। तो भाई बच्चों बच्चा जो है वो अजीबो गरीब अपने गरेबान में ढाक करके देखें, आप क्या कर रही हैं, किस वजह से अल्लाह ताला ने आपके बच्चों को ऐसा बना दिया है कि वो जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। ये आपके अपने गुनाह हैं, आप ऊपर वालों के साथ जो रवैया रखी हुई है इस वजह से अल्लाह ताला ने आपके बच्चों को आपके साथ ऐसा बनाया हुआ है कि वो आपकी बात सुनकर के नहीं दे रहा, वो सीख करके नहीं दे रहा, बच्चों को इल्जाम ना दें, अपने आप को इल्जाम दें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि आपने क्या जो है वो तमाशे मचाए हुए हैं, क्या रवैया रखा हुआ है अपने बड़ों के साथ, झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, उनकी बात भी नहीं मानते, और जो है वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं। सुनना तो दूर की बात, यानी जो बात जो जो बयान हो रहा होता है, जो दर्स में समझाया जा रहा होता है, उसकी तरफ तो इल्तफात ही नहीं करते, उसके ऊपर तो गौर ही नहीं करते, उसके ऊपर तो तकरार भी नहीं करते हैं। तकरार का भी इतना सिस्टम अल्लाह ताला ने बनवा दिया, नहीं नहीं करनी बस तकरार, लीस्ट बॉदर्ड इल्ला माशाल्लाह, और जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदे भी हो रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका नुकसान बढ़ा चला जा रहा है मुस्तकिल। अच्छा मैडम, एक और आपने पेंडोरस बॉक्स खोल दिया माशाल्लाह, एक से एक ना उन्होंने सवाल किया है। एक मिनट आ जाएगा। इन्होंने ये सवाल किया है ना, ये सवाल ऐसा है कि हम पढ़ तो नहीं सकते इस वक्त, ठीक है, क्योंकि फिर वो तो नहीं समझ में आएगा। यकसुई, ठीक है, इन्होंने यकसुई के मुताबिक सवाल किया है कि भाई गौर से सुनो, तवज्जो दो, ठीक है, और फिर बात को दोहराओ और अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करो, यकसुई, ठीक है। तो अब यकसुई के रास्ते में जो होती है ना वो डिस्ट्रैक्शंस रुकावट बनती हैं, कभी इधर सुन रहे हैं, कभी उधर सुन रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, है ना। तो वो जो है वो डिस्ट्रैक्शन बनती है, इंसान की यकसुई नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये बात जो है वो कई दफा हम भी समझा चुके हैं, क्योंकि हमारे हजरात ने समझाया है, हमारे बड़ों ने समझाया है, उनके बयानात भी मौजूद हैं यकसुई के ऊपर, उनकी किताबों के अंदर भी ये तफसील के साथ ये चीजें बार बार लिखी हुई हैं। ठीक है, कि यकसुई यकसुई यकसुई, और डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो इंसान की यकसुई को खत्म कर देती है, इसकी वजह से जो है वो उसको नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अकले सलीम, ठीक है, एक सलीम भाई भी सामने नजर आए तो उससे मुझे अकले सलीम का लफ्ज याद आ गया। ठीक है, तो अब अकले सलीम भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है ना। ठीक है, तो अकले सलीम का तकाजा ये था कि इस बात को समझते कि भाई जब शेख ने मना किया डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है, तो उस वक्त मुझे डिस्ट्रैक्शन के जो जो मौके हैं उनसे अपने आप को बचाना है। ठीक है, क्योंकि ये बात पहले भी हो चुकी है, 2-3 दिन पहले किसी ने सवाल किया था ना कि जी हम ये मामूलात जो हैं वो दिल की सफाई के लिए ही तो करते हैं, और जो है मुराकबे जो हैं वो गफलत से बचने के लिए ही तो करते हैं। तो उसको क्या जवाब दिया था साजिद ने? ठीक है, अपनी तरफ से नहीं दिया था, ये बिल्कुल पक्की ठक्की बात है कि जिक्र और मुराकबे जो हैं ये जो मामूलात हैं, ठीक है, तो ये अपनी मर्जी से करने से जो है फायदा कोई नहीं होता, ये शेख के हुक्म पे करने से फायदा होता है। और अगर शेख कहे कि खेती बाड़ी करो जा करके, या जो है वो इज्तिमा में जो है वो तुम खाना सर्व करने का काम करो, मुराकबा मत करो इस वक्त बैठ करके, बल्कि खाना सर्व करने का काम करो, खिदमत का काम करो, तो उस वक्त सालिक की तरक्की खाना सर्व करने से होती है, या किसी को चाय बनाने की जिम्मेदारी है तो सालिक की तरक्की चाय बनाने से होती है, क्योंकि असल में तो नफ्स को कमजोर करना है ना। तो अपनी मनमर्जी से जो है वो आप इबादतें करें, नफली इबादतों की बात, क्योंकि फर्ज इबादतें जो उनका तो ऊपर सबसे बड़े शेख साहब से हुक्म आया हुआ है, राइट। फर्ज इबादतें जो हैं तो उनका तो हुक्म ऊपर से आया हुआ है, वो तो कोई छोटे शेख साहब उसको चेंज नहीं कर सकते। या तो नफली इबादतों की बात हो रही है ना, या जो अपने तजुर्बाती जो तरीके होते हैं इस्लाह के, तो उनकी बात हो रही है कि भाई वो तो हालात के हिसाब से जो है मशायख चेंज करते रहते हैं। तो असल में इस्लाह जो है वो तो हुक्म की अताअत की वजह से होती है ना, अपनी मर्जी से तो नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कितनी बार समझाया गया है, तो इसको हमने नहीं समझ के देना, इसको हमने नहीं समझ के देना। तो फिर क्या होता है कि यकसुई के बारे में जब बात होती है तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो बुरी चीज है, तो फिर जो है ना वो हम फिर खुद से फैसला करते हैं कि जी डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो अच्छा, डिस्ट्रैक्शन बुरी चीज है तो अब जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है। तो इतना हम नहीं इन दो डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, हम इन दो डॉट्स को आपस में इस तरह नहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि भाई जब शेख ने हुक्म दिया है कि अब तुम जाके सुनो, तो अब सुनना जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो शेख के अपने बनाए हुए हुक्म के मुताबिक जो है वो सुनना है। अब वहां पर भी अपनी चलाते हैं, नहीं, अब डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, नहीं सुनना चाहिए। अल्लाह के बंदे, वो तो भाई हुक्म है कि इनको सुनो, तो अब कोई थोड़ी वो डिस्ट्रैक्शन होगी, अब तो वो आपके फायदे के लिए चीज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे एक दोस्त हैं, पता नहीं है कि क्लास के अंदर के नहीं है, ठीक है ना, उनको जरा ना हमने खूब डांट पिलाई थी इसी के ऊपर ना, कि जी वो बिल्कुल ही ना हर वक्त कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो अब जो है ना एक डिस्ट्रैक्शन का एक मौका था, बजाहिर डिस्ट्रैक्शन का मौका था, ठीक है, लेकिन इस आजिज ने उनको कहा कि आप यहां पर आए, आप यहां पर आए, ठीक है, वो भाग गए वहां से वो नहीं आए, वो भाग गए। अब मैं हैरान कि यार मैं उनको बुला रहा हूं यहां पर, वो नहीं आ रहे, यानी अब आप समझ रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होगा उनको उम्मीद है कि समझ में बात आ रही होगी। अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, अब तुमने काम नहीं करना, और जब तुम्हें काम करने के लिए नहीं कहा गया था वो तुम्हें बहुत करना था वो वाला काम। ये तो हाल है हमारा, दिस इज वॉट वी आर डीलिंग विद। आपको तो अंदाजा नहीं है ना कि वॉट वी आर डीलिंग विद, दिस इज वॉट वी आर डीलिंग विद। बात सारी की सारी घूम फिर करके जो है ना वो एक ही नुक्ते पर आती है कि नफ्स की अतात करनी है या बड़े की अतात करनी है। हमने हर हाल में नफ्सी की अतात करनी है, ठीक है ना, यानी डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना, वो भी नफ्स की अतात करके बचना है, और डिस्ट्रैक्शन में फंसना है तो वो भी नफ्स की अतात करके फंसना है। बड़े की बात नहीं माननी हमने, वो कह रहे कोई काम करने के लिए, नहीं भी वो तो नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह हो गया, क्योंकि उन्होंने उस मौके पे वो बात समझाई थी, तो अब जो है ना उसको जो है ना वो मैंने अपनी अकल से सोच लिया और मैंने उसको जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब मैंने अपनी जो अकल में मैंने जो कंक्लूजन निकाला ना मैंने उसी को मानना है, वो कहते जाए कोई काम करने के लिए वो मैंने नहीं करना, ठीक है। बहरहाल काफी मुश्किल बात थी, पता नहीं किसको समझ में आई किसको नहीं समझ में आई। उम्मीद तो ये करते हैं कि जिनको अल्लाह ने समझाना था हमको तो दो तीन समझ में आ गई होगी। तो भाई ये है कुछ बुनियादी उसूल। हमें उनके बयानात की रिकॉर्डिंग कहाँ मिल सकती है? अब ये आपको बताना पड़ेगा, आप किन के बयानात की बात कर रही हैं। हुक्म की अतात जब करे तो ये नियत करे कि अल्लाह आपकी रजा के लिए अपने शेख की अतात करे। तो शेख की अतात कुछ बहुत कम उम्र लोग हैं जो क्लास के अंदर आ जाते हैं, अब उनकी उम्र से ये बढ़ करके क्लास है, ठीक है। तो अब उनके सवाल भी ऐसे होते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें, ठीक है जी। ऐसे ही है, वो अपनी अकल माननी है, चाहे वो दीन में माननी हो चाहे दुनिया में माननी हो चाहे जो है वो किसी चीज में बातचीत में, बस अपनी ही, ठीक है। अपनी अकल जो होती है वो नफ्स से मगलूब होती है और नफ्स जो होता है वो शैतान से मगलूब होता है, सीधी सी बात है। कितना मुश्किल है ना ये, कितनी मैं आपको रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ, कितने जो है ना वो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो है ना वो केमिकल इक्वेशंस पढ़ा रहा हूँ और जो है वो थ्योरम्स पढ़ा रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या जो मेरे लिए मुश्किल चीजें होती थी उनका मैं आपके सामने ना ले रहा हूँ। कितनी मुश्किल चीज है ना ये, कि अकल जो होती है नफ्स का से मगलूब होती है और नफ्स जो होता है वो शैतान से मगलूब होता है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो मैथमेटिकल इक्वेशन हजरत ने बता दिया, हमें तो समझ में नहीं आकर के दे रही है वाली बात, ये ऐसे ही है, ये इतनी मुश्किल चीज है ये। इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब लिखा है कि मैं को छोड़ना है, ये समझ आई है हजरत साहब, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, मैं को छोड़ना है, लेकिन अब मैं क्या होती है और मैं ना की मैं होती है या कौन सी वाली मैं होती है, किस चीज को मैं कहते हैं ये समझ में नहीं आया तो फिर क्या करें, ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। आगे जो है ना वो फरमाया कि अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, ठीक है, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम कि वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जानों का नुकसान कर दिया। इसमें इशारा है कि शुरू आयत में जो अल्लाह ताला की उमूम रहमत का जिक्र है, कुफार व मुशरिकीन अगर उससे महरूम हुए तो वो खुद अपने अमल से महरूम हुए, उन्होंने हुसूल रहमत का तरीका यानी ईमान इख्तियार नहीं किया, ठीक है। तो कतबा अला नफ्सी ही रहमा जो है, तो ये इससे अगर कोई निकलता है जैसे शैतान, इन्ना रहमती वसेअत कुल्ल शई, रहमत मेरी हर चीज में वसी है, तो शैतान किधर गया भाई? शैतान ने अपने इख्तियार से अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया उस रहमत में से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कायनात तोड़ करके कायनात से बाहर निकल गया, अल्लाह ताला की जो है वो मिल्कियत से बाहर निकल गया, नहीं, है वो इसी कायनात के अंदर, है वो इसी निजाम के अंदर जिसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत मगलूब है, लेकिन उसने अपने आप को इन सम सोर्ट ऑफ वैक्यूम में जो है ना सिक्लूड कर लिया है। जैसे मिसाल के तौर पर कमरे के अंदर जो है वो हवा है, हर तरफ हवा है, हर तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन आप जो है ना वो एक बॉल लेकर के आए जो कि वैक्यूम हो और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है ना, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो वो बॉल है या वो जो कंटेनर है तो वो इस कमरे के अंदर ही है ना, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बाहर से तो उसके उसके स्ट्रक्चर को लग रही है लेकिन अंदर तो नहीं है उसका इफेक्ट हो रहा ना, ठीक है। तो ये फिर वो शैतान और जो इस तरह से कहते हैं यानी ईमान से पहलू तही करते हैं, ना मानने की उन्होंने जो है वो इरादे किए हुए होते हैं, वो अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते हैं। वलहू मा, अच्छा अल्लाह को सब नजर आ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है, ऐसा नहीं है कि जो इस कमरे का मालिक है जो इस कमरे का जो है वो कंट्रोल कर रहा है उसको नहीं पता कि ये अंदर बैठ के कि क्या हरकतें कर रहा है, ये अपने आप को सिक्लूड कर रहा है या अपने आप को जो है वो इंक्लूड कर रहा है, मालूम उसको सब कुछ है, ठीक है।
वही अल्लाह ताला का भी मामला है, अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है,
वलहू मासा कना फिल लैली वन नहार, कि यहाँ या तो सुकून से मुराद इस्तकरार है, ठीक है, यानी करार पकड़ना, यानी जो चीज जहान के लैल व नहार में मौजूद है वो सब अल्लाह ही की मिल्कियत, ठीक है, कोई चीज अल्लाह की मिल्क से बाहर नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मुराद सुकून व हरकत का मजमुआ, ठीक है, यानी सुकून का लफ्ज इस्तेमाल होता है स्टिल, जो कि हरकत ना करती हो जो चीज, ठीक है। तो भाई इस कायनात के अंदर हर चीज तो साकिन नहीं है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो हरकत भी कर रही है, ठीक है, यानी जमादात वो चीजें होती हैं जो कि खुद से हरकत नहीं कर सकती, उनको कहा जा सकता है कि वो साकिन है, ठीक है। लेकिन नबातात भी तो इसी कायनात में हैं, हैवानात भी तो इसी कायनात के अंदर हैं, और जमादात भी ऐसे हैं कि जिनको हैवानात हरकत दे रहे हैं, या उनको जो है वो नबातात हरकत दे रहे हैं, या फरिश्ते उनको हरकत दे रहे हैं। तो ये ना मजमुआ है, सुकून और हरकत का मजमुआ, यानी मा सकना व मा तहर्रक, ठीक है। लेकिन जिक्र जो है वो सिर्फ सुकून का किया गया, हरकत जो उसके बिलमुकाबिल है वो खुद ब खुद समझ में आ सकती है, ठीक है, यानी जब एक साइड मुराद है तो दूसरी साइड जो है ऑटोमेटिकली उसके मातहत रह करके वो भी मुराद हो जाएगी। और इसकी एक और भी तशरीह हो सकती है, वो ये कि हर चीज साकिन है। क्या मतलब? कि किसी भी चीज के अंदर हरकत की ताकत नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, किसी के अंदर इन ऑफ इट सेल्फ हरकत करने की या अपने हालत को चेंज करने की, भाई हरकत क्या है, हालत को चेंज करना, पहले आप यहां पे थे, अब उससे 1 इंच आगे चले गए तो आपकी हालत चेंज हो गई ना, तो ला हौला का यही तो मतलब है, राइट, तब्दीली। तो किसी के अंदर अपने आप को तब्दीली करने की, अपने आप को चेंज करने की, या अपनी पोजिशन चेंज करने की, या अपना हाल चेंज करने की किसी के अंदर सलाहियत नहीं है, सिर्फ उसमें जिसमें अल्लाह ताला डालता है। तो इस वजह से हैवान में जब अल्लाह ताला रूह डालता है, यानी जिसको कि हैवानी रूह कहा जाता है, तो उसके अंदर हरकत की सलाहियत आती है, वरना नहीं होती, वो भी साकिनी होती है, असल में तो वो साकिनी होती है। नबातात के अंदर अल्लाह ताला रूह डालता है, तब उसके अंदर जो है वो ग्रो करने की यानी नबा की सलाहियत आती है, वरना वो भी साकिनी है। जमादात के अंदर भी अल्लाह ताला कभी जो है वो ऐसी रूह डाल देता है, यानी रूह की इतनी ताकत डाल देता है, इतनी ताकत वाली रूह डाल देता है कि जमादात भी खुद से हरकत कर लेते हैं। क्या मतलब? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की खशियत से ये पत्थर जो है वो गिर पड़ते हैं, खशियत से गिर पड़ते हैं, इसलिए नहीं कि वो जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गिर पड़ते हैं, या किसी ने आकर उनको धक्का दिया होता है इस वजह से वो गिर पड़ते हैं, या किसी ने उनको खींचा होता है इस वजह से, नहीं, अल्लाह की खशियत की वजह से वो गिर पड़ते हैं। तो उनके अंदर अल्लाह ताला इतनी रूहानी ताकत पैदा कर देते हैं कि वो इसके रिएक्शन में अपनी हाल को चेंज कर लेते हैं, वरना असल जो है वो उनकी साकी नहीं है। तो इस तरह से लफ्ज सकना के अंदर जो है ना फिर सब शामिल हो गए, जो हरकत करने वाले हैं और जो हरकत करने बजाय नहीं वाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल। ठीक है, कोई सवाल या कोई कमेंट हो पढ़ना, फिर हम अगली आयात जो है वो कल इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। क्या लिखा आपने कि आपने कहा था कि अगर कोई नेकी करे और फिर बाद में नेकी पर पछताए तो नेकी खत्म हो जाती है, अगर ला इल्मी में ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए कि नेकी वापस आ जाए? अगर ला इल्मी में ऐसा हो गया तो भाई ला इल्मी में तो ऐसा नहीं होता है, गुनाह की वजह से ऐसा हो जाता है कि नेकी के ऊपर जो पछता रहे होते हैं, तो भाई इसके ऊपर भी वही काम करना होता है जो किसी और गुनाह के ऊपर करना होता है, यानी ये गुनाह ही है कि नेकी के ऊपर पछता गए ना, तो इसके ऊपर तौबा करनी होती है, ठीक है, इस्तगफार करनी होती है। अब ये इस्तगफार आपका अल्लाह ताला को कितना पसंद आता है ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या अल्लाह ताला उस नेकी के सवाब को रिस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे, ये फिर जो है वो आपका इस्तगफार और अल्लाह ताला की जो है वो रहमत, ये दोनों चीजें मिलकर के फिर इनका फैसला होता है कि वो रिस्टोरेशन होगी कि बस गई अब गई अब खलास अब नहीं मिलती अब आगे करो मूव फॉरवर्ड, राइट। तो इस वजह से ना इस किस्म की हरकतें करनी नहीं चाहिए। ये ला इल्मी जो है ना वो क्या है भाई, इल्म हासिल करें ना, बात को गौर से सुने समझें,
याद रखें और इस किस्म की हरकतों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ भी मांगे, अल्लाह मुझसे ऐसी कोई हरकत मत करवा दीजिएगा भाई कि मैं अपनी किए कराए के ऊपर पानी फेर दूं। वो एक बड़ा लतीफा याद आई है हजरत से, अभी गाड़ी में बात हुई हजरत जी, वही कौन सी बात कर रहे थे कि लाहौर में जो है वो, हाँ अनार का जूस और अनार का जूस बेचने वाले, उसकी बिक्री नहीं हो रही थी, तो उसने जो है ना वो ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपका खून खुश्क हो गया है तो आप हमारे पास से जो है ना वो ये जूस लेकर के जाएं, इस जूस में इतना यानी ब्लड है इसके अंदर अनार की जूस में कि आपका खुश्क खून जो है वो फिर से वो, तो इसके ऊपर उसकी बिक्री होनी शुरू हो गई। तो मुझे याद आया कि हजरत आपने एक जमाने में कभी बताया था कि हजरत की जो फैक्ट्री थी ना जिसमें जॉब करते थे, तो आपको पता है कि हमारे मुल्कों में खुसूसन जहाँ भी, या हमारे मुल्क वाले जहाँ भी चले जाएं तो फिर वहाँ बाथरूमों का क्या हाल होता है, ठीक है? तो अब बाथरूम जाते हैं, बाथरूम इस्तेमाल करते हैं और जो है ना वो फ्लश किए बगैर और सफाई किए बगैर बाहर आ जाते हैं। अमरीका वगैरह में तो पानी नहीं होता, तो वहाँ तो चलो एक बहाना है कि भी पानी होता तो हम उसको साफ करते हैं, लेकिन सऊदी अरब में और पाकिस्तान में तो कम से कम अक्सर जगहों पे बाथरूम में पानी होता है, लेकिन नहीं फ्लश फ्लश नहीं करना होता, वही गंदा छोड़ करके आते हैं, अगला बंदा आकर के फिर वो डील करे उसके साथ, ठीक है? तो अब जो है ना वो मैनेजमेंट ने सोचा कि यार क्या करें इसका हल ना, कि लोग जो है वो फ्लश और साफ करके बाहर निकला करें। तो बहुत सारे साइंस बनाए गए, किसी ने कुछ जो है वो साइन का मशवरा दिया, किसी ने कुछ साइन, लेकिन किसी ने पढ़ करके नहीं दिया, किसी ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, ठीक है? तो हजरत कहते हैं कि मेरे दिल में एक बात आई, मैंने वो बात लिखवाई, तो जब वो लिखवाई ना बाथरूम के अंदर दरवाजे के ऊपर, ठीक है, कि बैठे जाके बैठे ना तो उसको वो बात नजर आए, पढ़े वो उसको, उसके बाद जो है ना हर बंदा फ्लश करके निकलता था। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो कैसे कैसे काम लेता है। तो क्या लिखवाया हजरत ने, लिखवाया अपने किए पर पानी फेर करके जाए, अपने किए पर पानी फेर करके जाए, ठीक है? तो ये पढ़ने वालों को इतना पसंद आया कि सबको जो है ना वो ने? तो ये मौके मैंने कहा कि आपने एक बयान नहीं बताया था, तो हजरत ने सुना नहीं शायद मेरी बात को पूरी तरह, वो मैंने ही लिखवाया था। मैंने कहा जी हजरत जी आपने यही बताया था कि आपने ही ये बात लिखवाई, ठीक है? तो किए कराए पे पानी फेरना इस किस्म की गलती से जो है ना, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये गलती नहीं है, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नेकी के ऊपर पानी फेरना ही बहुत बड़ी गलती है, इसके ऊपर उससे बचना चाहिए। बाकी इन्होंने सवाल किया वही वाला कि भाई लिसनिंग टू खुलफा बयान फ्रॉम ई महद एतिकाफ इज ऑल्सो ए डिस्ट्रैक्शन। भाई एक तो आपको उमूमी जवाब दे दिया था, ठीक है, कि जब शेख ने खुद इंतजाम किया है या शेख खुद किसी चीज की तरफ बुला रहा है तो भाई ये तो अतात हो गई ना, तो फिर डिस्ट्रैक्शन वाला जो फैक्टर है ना तो फिर वो उसके अंदर से निकल गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हुक्म आया ना भाई। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि यार ये तो वो कह रहे हैं करने के लिए, तो फिर डिस्ट्रैक्शन अगर होता तो जो शेख खुद बता रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन इज हार्मफुल, वो खुद डिस्ट्रैक्शन का इंतजाम कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, ये कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों है भाई? ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, ठीक है ना? तो एक तो ये बात हो गई ना, और फिर दूसरी उसके अंदर फिर मजीद तफसीलात हो सकती हैं, अगर आपका जो है वो बैत का ताल्लुक जो है वो फिर किसी और के साथ है, या आपके जो है वो किसी और के साथ बहुत इसलाही ताल्लुक है, तो फिर मजीद डिटेल्स जो है वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकती हैं कि मुझे कितना सुनना चाहिए, क्या मुझे सिर्फ जो है वो महद के सारे बयान सुनने चाहिए या मुझे सेलेक्टिवली जो है वो एक दो बयान सुनने चाहिए। अब देखें जो इज्तमागाह में मौजूद होता है तो वो तो घर बार छोड़ छाड़ करके वहां पे पहुंचा है ना, तो अब उसकी क्या जिम्मेदारी है कि फजर का भी बयान सुने, फिर उसके बाद जो है वो इशराक या चाश्त के टाइम पे जो बयान होता है उसको भी सुने, फिर जोहर के बाद जो बयान है उसको भी सुने, फिर असर के बाद जो बयान है उसको भी सुने, फिर उसके बाद जो है हजर जी का भी बयान होता है उसको भी सुने। भाई वो तो वहां पे गया ही इस काम के लिए। लेकिन अब एक शख्स है जो कि अपने घर में रह रहा है, जिसको दफ्तर भी जाना है, या औरत है उसने घर के अंदर दूसरे काम भी करने हैं, ठीक है, अब वो भी जो है ना वो अपने घर के अंदर इज्तिमागाह बना दे, ठीक है ना, और वो हर जो है वो बयान सुन रही है, वो हर चीज जो है वो फॉलो कर रही है उसके अंदर, तो आपका क्या ख्याल है, इज दिस द सेम एज बीइंग इन द इज्तिमा का? भाई ये सेम नहीं है ना। तो अब जो है ना इसको जो है वो फिर मशवरा कर लेना चाहिए जिनके साथ आपका सलाई ताल्लुक है कि मुझे जो है वो कितना सुनना चाहिए और कितना नहीं सुनना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए जो है ना जो कि वहां पर मौजूद नहीं है वहां पर फिर वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का एक फैक्टर पैदा हो सकता है, ठीक है?
तो कम से कम हजरत जी का बयान जरूर से सुनना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम इतना तो जरूर से सुनना चाहिए, लेकिन बाकियों के बारे में मशवरा कर लेना चाहिए कि भाई इतना मेरे लिए नुकसानदायक है, इतना मेरे लिए फायदा मंद है। ठीक है, उम्मीद है कि पिछले सवाल करने वालों को भी जवाब मिल गया होगा और आपको भी जवाब मिल गया होगा। वाखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।